तो मैं आपको एक सुंदर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का श्लोक का निरूपण करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि जो मनुष्य मानव मानवी मनुष्य देह मिलने पर भी अगर वो अपना बेड़ा पार नहीं करता तो वो आत्महत्यारा है। नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम पुमान भवाब्दिम नातरित स आत्महना। नृदेह नर का देह मनुष्य देह सुलभम दुर्लभम बहुत दुर्लभ मनुष्य का देह बहुत दुर्लभ है। सुलभम दुर्लभम और प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधार प्लवम जहाज सागर को पार करने के लिए क्या चाहिए जहाज चाहिए छोटी नैया नहीं चलेगी। तो ऐसा बड़ा जहाज ये मनुष्य देह है तो वो हमें मिला एक प्लवम सुकल्पम दूसरी चीज भी हमें चाहिए वो है लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार सुकानी खेवटिया नाविक कैप्टन। तो जहाज मिल गया नृदेह नरदेह मनुष्य देह और हमें जहाज को चलाने वाला कैप्टन भी चाहिए। कैप्टन के बिना जहाज नहीं चलेगा। और भगवान आगे कहते हैं कि दो चीजें होगी फिर भी नहीं चलेगा तीसरी चीज भी चाहिए वो है मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम। ये जहाज को पुश करने वाला जहाज को चलाने के लिए वायु नभस्वता अनुकूल वायु जो जहाज का डायरेक्ट सड़ होता है उसमें वायु फंसता है तो जहाज ऐसे चलता है। आपने देखी होगी नौका तो नौका कैसे चलती है वायु से या तो हल्ले सा। तो मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम चलती है पुशिंग तो मेरी अनुकूल शिक्षाएं ये अनुकूल वायु है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं क्या है क्या है वायु वायु भी कैसी चाहिए अनुकूल प्रतिकूल ठाकुर नहीं चलेगा प्रतिकूल नहीं चलेगा अनुकूल चाहिए। प्रतिकूल वायु होगी तो नया पार लगनी चाहिए तो कहीं और। तो देखो कितनी सुंदर बात बताते हैं भगवान कि खाली नरदेव आपको मिला उससे कल्याण नहीं हो सकता खाली गुरु मिले उनसे भी कल्याण नहीं हो सकता और खाली भगवान कृष्ण की शिक्षाएं तीनों चाहिए हमें तीनों एक साथ चाहिए। कुत्ते को अनुकूल वायु कृष्ण की शिक्षा कुत्ते को मिल जाए तो कुत्ता क्या करेगा इससे भगवत गीता। तो तीनों चाहिए नृदेह आद्यम ये भाषांतर तो आगे क्या क्या कि भाषांतर में मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम पुमान भवाब्दिम ना तरित स आत्महना। ये तीनों चीजों मिलने पर भी अगर कोई अपना बेड़ा पार नहीं कर सकता तो वो आत्महत्यारा है। तो नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, ये मनुष्य देह दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म सत्संगे तरावहे भव सिंदुरे गोविंद दास। तो ये नृदेह हमें कब मिलता है? 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हर योनि में हमें 4 दुख मिलते हैं। सबसे बड़े 4 दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। ये 4 हमारे सबसे बड़े कष्ट हैं और ये हर योनि में हमें मिलता है चारों कष्ट। दुर्लभम, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। प्रहलाद महाराज, दुर्लभम मानुषम जन्म, तो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में प्रसार जब हम होते हैं, जो सोचो जलजा नवलखानी, जल में 9 लाख बार हमें 9 लाख योनियों में चक्कर काटा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक फिश, दूसरी किस्म की फिश, मगरमच्छ, वेल, सार्क वगैरह वगैरह, तो हर योनियों में 9 लाख योनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितना कष्ट होगा। जलजा नवलखानी स्थावरा लक्ष विंशति, और स्थावर पेड़ पौधे 20 लाख बार हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नॉर्थ पोल जैसा बर्फीला प्रदेश, वहाँ अगर आप पेड़ बन गए, लंबा आयु 4000 साल तक का पेड़ का आयु, और ठंडा मूल बर्फ, कितनी वेदना। तो ये पेड़ पौधे हमें कितनी बार बने हम? स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख बार। जलजा नवलखानी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयोर रुद्र संख्या का, कृमि बने हम, कृमि कीड़े मकोड़े, कृमि रुद्र संख्या 11 लाख बार, रुद्र संख्या का कृमि। ये स्वाभाविक उत्क्रांति है, स्वाभाविक उत्क्रांति वेदों में वर्णित। जलजा नवलखानी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयोर रुद्र संख्या कम, और 11 लाख पक्षी नाम, पक्षी नाम, पक्षी 11 लाख, और त्रिमलम 30 लाख, पशव पशु, पशु 30 लाख, और चतुर्लखानी मानव मनुष्य 4 लाख योनि, निग्रो ब्लैक अफ्रीका के लेके यूरोपियन वाइट, अरे अपने देश की बात करो, साउथ में जाओ तो काले लोग, कश्मीर में जाओ तो गोरे लोग, और यहाँ बंगाल की ओर जाओगे तो चाइनीज जैसे लोग, लंबी छोटी आँखें, और इधर गुजरात की ओर आओगे तो मेरे जैसे लोग, है ना, और बीच में अलग किस्म के मध्य प्रदेश, वैरायटी ऑफ पीपल, मनुष्य 4 लाख योनि मनुष्यों की। 83 चतुरम चैव लक्ष्यां त्वां जीव जातिषु ब्रह्मद्भिर् पुरुषं प्राप्यं मानुष्य जन्म पार्यजात तदपि अवलतां जात तेषां आत्माभिमानिनां वरा का नाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम् अस्सी अस्सीतिम चतुरम अस्सी प्लस चार चतुर चार चौरासी अस्सीतिम चतुरम चैव लक्षां लाख चौरासी लाख लक्षां वाम जीव जातिषु इतनी जीव जाति है भ्रमद्वीर पुरुषम प्राप्यम भ्रमण करते 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 मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। बड़ा एग्जाम्पल है कि दिल्ली जैसा बहुत विशाल कुआ हो और 100 किलोमीटर उंडा हो और ड्राई हो, पानी नहीं हो, और वो कुएं में नीचे छटकने का दरवाजा खिड़की एक हो और आप अंधियारा दिखाई नहीं दे रहा और दीवार पकड़ते 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 आप वो दरवाजा ढूंढ रहे हो, तो घूमते 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 आप आओगे, जब दरवाजा आया तो खुजली आ गई, तो चला गया दरवाजा, और फिर से 84 लाख योनि, फिर से मनुष्य योनि ये दरवाजा, फिर से चक्कर चालू, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म, तो करते घूमते 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 दरवाजे पे आए, ठोकर लग गई, गिर गए, खड़े हुए तो आगे निकल गए थोड़े से, फिर से चक्कर चालू। तो मनुष्य योनि का दरवाजा है, मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में ही आप ये बहुसागर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट सकते हो, कुत्ते गधे की योनि में नहीं हो सकता। तो ये संसार है, तो ये इसलिए कह सुलभम दुर्लभम नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, मनुष्य देह दुर्लभ है 84 लाख योनियों के बाद, और उसमें भी दिल्ली या भारतवर्ष में जो मनुष्य योनि मनुष्य शरीर मिलना, ये तो बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली में जन्म 3 करोड़ बार मनुष्य कहीं और जगह बनो आप, तो आपका नंबर भारतवर्ष में लगता है। सोचिए 84 बार चक्कर काटो मनुष्य बनो, ऐसा 3 करोड़ बार, तो आपको इतना पवित्र स्थल पवित्र जन्म मिलता है, और हम वो भी वैसे ही गवा देते हैं कंप्यूटर के पीछे बैठ के, और कई कई चीज से हम गवाते हैं। ये मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने एकमात्र हेतु से की है, वो हेतु है कि बुद्धि दी है और सब कुछ दिया इसलिए कि हम कृष्ण कौन है वो समझे, हम कौन है वो समझे, माया कौन है क्या है वो समझे। तो ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये मनुष्य देह हमें दिया जाता है। ये 84 लाख योनि के चक्कर में से निकलने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया जाता, मनुष्य शरीर की डिजाइन, मनुष्य शरीर की रचना भगवान ने, क्या हेतु है मनुष्य शरीर की रचना का हेतु क्या है, और कृष्णा भगवत प्रेम प्राप्त करें, तो ये हेतु है। लेकिन हम किसमें फंसते हैं, माया में, ये माया है और दूसरी माया स्त्री, और स्त्री के लिए पुरुष कांचन और कामिनी, ये माया का उग्र स्वरूप है। माया का पिक्चर दौड़ना हो तो आप कैसे दौड़ोगे, सुंदर स्त्री का पिक्चर दौड़ो और डॉलर साइन, प्रभुपाद जी का शब्द है डॉलर, तो माया का पिक्चर बन गया। तो हमें ये मनुष्य शरीर जो एकमात्र उद्देश्य से डिजाइन किया गया है वो मिला, तो हम उनका उपयोग क्या करते हैं, कुछ और उनका खराब उपयोग इंद्रिय तृप्ति में। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। विषय विषम विष सतत खाइनु, विषय रूपी घोर हलाहल विष मैं सतत खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं गौर कीर्तन रस में मग्न नहीं हो पा रहा हूं। 24 घंटा 100 साल तक एकमात्र कार्य वो क्या है, गौर कीर्तन रसे मगन होना, एकमात्र कार्य। आप कहोगे तो मेरे खान पान का क्या होगा, तो मीरा के खान पान का क्या हुआ, मीरा कोई कमाने गई, सदगुरु स्वामी कमाते थे, सब कुछ छोड़ दिया, बाद में वृंदावन में आए कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो क्या खाते थे? रघुनाथ दास ठाकुर खाली थोड़ी सी छाछ। कहने का मतलब ये है कि आप खाओ, पेट भर के खाओ, और पैसा भी जो भी करना है करो, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम, मनुष्य शरीर की डिजाइन श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही, एकमात्र हेतु से भगवान ने मनुष्य शरीर की रचना की है, और कोई उद्देश्य नहीं है मनुष्य शरीर का। सब कुछ पशु पंछी करते हैं, बच्चों का लालन पालन वो करते हैं, वो कोई मजूरी करने नहीं जाते कि खाना मिल जाए, खान पान भी उन लोगों का होता है, हाथी को मण चींटी को कण देता है, वो लेता नहीं वो देता है। तो मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने कौन सा एकमात्र उद्देश्य से की, कौन सा उद्देश्य है, हाँ? माता है कुशाग्र बुद्धि वाली है। मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने क्या उद्देश्य से की, बस एक उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं। तो नृ देह आद्यम सुलभम दुर्लभम दुर्लभ, 84 लाख योनियों काट काट के हमें अभी ये मनुष्य देह मिला, दुर्लभम। हरि हरि विफले जनम गोआइनु मनुष्य जन मया राधा कृष्ण नाबजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु संसार विषानले दीवानिसी हिया ज्वले जुराइते ना कोइनु पाय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हरि हरि विफले हरि से विमुख होके जन्म गवाइनु, मैं मेरा जन्म गवा रहा हूं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना बजिया। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है राधा कृष्ण का भजन करना, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना बजिया जानिया सुनिया विष खाइनो, मैं जान बूझ के विष खा रहा हूं। कोई जान बूझ के विष खाएगा? आपको कहा जाए हड्डिया दो लाइक दिस और रेड क्रॉस पॉइजन डेड पॉइजन ऐसी बॉटल आपको दे दूं पियो, कौन पिएगा? लेकिन ये हमारा हाल है, हम पी रहे हैं पॉइजन। जानिया सुनिया विष खाइनो, संसार विषा आनले दीवा निशी हिया ज्वले, जुराई ते ना कोई नो उपाय। संसार ये विष का अग्नि है और वो विष के अग्नि में दिन रात मेरा हैया जल रहा है। दीवानिसी हिया जले जुराई ते ना कोई नो उपाय, उनमें से बचने का उपाय मैं नहीं देख रहा हूं। तो ये हमारा हाल है, हमारा मनुष्य जन्म, उनकी डिजाइन, मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने एकमात्र हेतु से की और हम कई और हेतु में लगा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा घाटा है। आपको अगर घाटा हो करोड़ों का खरबजों का तो आपसे सहन होगा, लेकिन ये तो खरबजों अरबजों का घाटा हो रहा है हर पल, लेकिन हम गाफिली में सब कुछ छोड़ देते। होगा कभी कभी, जभी जभी देखेंगे सोचेंगे, अभी जवान हो बूढ़ा हो, बूढ़ा होगा तो मर जाएगा, क्या बुढ़ापे में करेगा? बुढ़ापे में श्वास भी नहीं लिया जाएगा, बुढ़ापे में खाना भी नहीं खाया जाएगा। अगर खाओगे तो पचाया नहीं जाएगा, चबाया नहीं जाएगा, चबाओगे तो उतारा नहीं जाएगा, उतारोगे तो पचाया नहीं जाएगा, पचाओगे तो निकाला नहीं जाएगा। मुझे अनुभव हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो मेरा अनुभव है, क्या करोगे? तो इसीलिए गंभीरता से ये मनुष्य जीवन लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं नृदय आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम। ये मनुष्य देह प्लवम है, जहाज दरिया में 12-12 फुट ऊंची लहरें आती हैं, तो छोटी बोट नहीं चलेगी, आपको जहाज चाहिए। और ये जहाज मिल गया आपको भगवान की कृपा से, मनुष्य देह रूपी जहाज मिल गए, तो ये जहाज का सदुपयोग करना चाहिए। और ये जहाज तो मिल गया तो उनको चलाने वाला चाहिए, गुरु कर्णधारम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मीरा गाती है सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खरचे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, जन्मो जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो। लेकिन ये राम नाम रतन धन हमें नहीं चाहिए, हमें तो डॉलर रतन धन चाहिए, है ना, 1000 की नोट चाहिए, और वो भी कितनी चाहिए, थप्पी, और हर रोज की थप्पी एक चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भगवान के नाम का धन ये हमारा सच्चा धन है। और दिन दिन बढ़े तो सवाई, हर रोज कोई पूजी सवाई हो जाती है, लेकिन ये दिन दिन बढ़े तो सवाई, खर्चे न खूटे, आप उनका खर्च करो तो ये पूजी खूटती नहीं। और दिन दिन बढ़े तो सवाई, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे। तो ये प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, कर्णधार चाहिए, गुरु कर्णधार। अगर कर्णधार आपकी नैया पार लगाने गोलोक वृंदावन कृष्ण के पास ले जानी चाहिए आपका जहाज, लेकिन कोई ऐसा ब्रह्मवादी गुरु, मायावादी गुरु, निर्विशेष गुरु, निराकारी गुरु, ओम सोहम तत्वमसी एंड क्या नहीं, तो ये गुरु आपकी नैया उल्टी ले जाएंगे कृष्ण से। कृष्ण से कहाँ ले जाएंगे? विपरीत। तो आपका काम ये सारा 84 लाख कितनी बार योनियों में भटक के आपने मनुष्य रूपी जहाज पाया, जीवन पाया, तो वो कैसा जाएगा? निष्फल। कितना बड़ा घाटा है समझो, सोचो गंभीरता से, सोचो गंभीरता से। कोई दूसरी ओर हमारा मनुष्य जीवन का, जीव का एकमात्र चरम परम लक्ष्य है, वो है हमारे पिता श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम संपूर्णतया हमारे हृदय में जागृत करना, ये एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य। और ये नाविक कैप्टन हमारी नैया निशाने पे, तीर निशाने पे लगाना चाहिए, तो उल्टा फेंकेगा, उल्टी नैया ले जाएगा, तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा कि नहीं होगा। इतनी सीरियस बात है कि इतनी लाख योनियों में भ्रमण करते करते कष्ट झेलते हुए मुझे ये शरीर मिला, जो प्लवम सुकल्पम जहाज है, गुरुकर्णधार। तो ये वैष्णव गुरु, वैष्णव ऊर्ध्वपुंड तिलक वाला और गुरु परंपरा में श्री कृष्ण से शुरू हुई, गुरु परंपरा में होना चाहिए गुरु। शास्त्रों का निचोड़, अर्क, तत्व ज्ञान, दर्शन उनको पता होना चाहिए। शास्त्रों के दर्शन फिलोसॉफी पर सबको कन्विंस कर सके ऐसा चाहिए, ये गुरु की लायकात है। सब कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। 6 कर्मों में निष्णात ब्राह्मण भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो वो ब्राह्मण चाहे वो निपुण हो सब वेदों पुराणों में, लेकिन वो गुरु नहीं है। क्यों? अवैष्णव गुरु न स्यात्। जो वैष्णव नहीं है वो गुरु बनने लायक नहीं है, और आपको वो गुरु नहीं बनाना चाहिए अगर वैष्णव नहीं। क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक, वो है कृष्ण, और सबका निशाना एक, और वो है कृष्ण। इसलिए कृष्ण भक्त ही कृष्ण के पास आपको ले जा सकते हैं, नहीं तो आपके जहाज कहाँ जाएगा? कुछ उल्टा। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो पिमा। खिचड़ा मत करना, भगवान यहाँ सब अलग करके बोलते हैं कि जो यान्ति देव व्रता, देवों की उपासना करने वाला देवों के पास जाएगा, भूतों की उपासना करने वाला, और यान्ति देव व्रता देवन पितृन पितरों की उपासना करने वाला पितरों के पास जाएगा, और यान्ति मद्याजिनो पिमा जो मेरी उपासना करता है, यान्ति जाना आपका जहाज जाएगा। भगवान खिचड़ा नहीं रखते, बिल्कुल अलग बात बता दी। बम्बई की टिकट लो और कलकत्ता पहुंचूंगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हमें गुरु कर्णधार पहले वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव, क्योंकि देवी देवताएं हमारे माननीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन श्री कृष्ण देव देव जगत पते देवादि देव, देवों के देव कृष्ण है। तो मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर की डिजाइन क्यों भगवान ने की? ताकि मनुष्य शरीर से वो सोच समझ के श्री कृष्ण के पास वापस जीव लौटे। मशीन है, मनुष्य देह मशीन है, मशीन से हमें जाना है श्री कृष्ण के पास, दूसरा मशीन से नहीं जा सकते। सोच समझ ही नहीं है, कुत्ते गधे कैमल। तो गुरु कर्णधार वैष्णव स्वपचो गुरु, चांडाल भी क्यों ना हो लेकिन अगर वो वैष्णव है तो वो गुरु है। तो ये गुरु की लायकात आपको पता होना चाहिए, और बाद में गुरु का सान्निध्य, उनके साथ रहो, उनके पास रहो, उनका संग करो, देखो गुरु बनाने लायक है कि नहीं। शिष्य को गुरु देखता है, हरि भक्ति विलास में लिखा है कि एक साल तक गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को बराबर संपर्क में एक दूसरों का, हाँ मेरे लायक ये है, मेरे लायक ये है, तब तक चॉइस। तो ये गुरु कर्णधार, गुरु कर्णधार। और बाद में तीसरी चीज क्या चाहिए हमें, मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम, ईडितम पुशिंग, चलाने वाला, धक्का लगाने वाला, अनुकूल वायु चाहिए। उल्टा वायु होगा तो या तो टोर्नेडो होगा या हरिकेन तूफान आदि आएगी, तो ऐसा वायु नहीं चाहिए आपको। आदि तूफान से आपकी नैया वहाँ ही चक्कर काटेगी, हमें ये वायु नहीं चाहिए। अनुकूल नभस्वता, हमें अनुकूल। तो अनुकूल वायु क्या है, मेरी शिक्षा है, कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता और भागवत ये उनकी अनुकूल शिक्षा है। जहाँ भी लिखा है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, ये अनुकूल शिक्षा है। तो मया अनुकूल नभस्वता ईडितम उमान भवादिम ना तरे, जो मनुष्य भवसागर नहीं तरता है ये तीनों चीज मिलने पर भी, तो वो आत्महत्यारा है। ये तीनों चीज इंटैक्ट सही ढंग से मिल गए तो आपका बेड़ा पार होके ही रहेगा, लेकिन मनुष्य शरीर मिला, गुरु कोई और मिला तो आपका जहाज कहीं और, तो आत्महत्या कर रहे हो आप। अगर तो शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर से आप हर चेष्टा कर रहे हो लेकिन भगवान का भजन नहीं, फिर भी नहीं बेड़ा पार हो गया। और आपके पास मनुष्य देह है, गुरु भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं नहीं है, लोगों को पता नहीं कि गीता क्या है, भागवत क्या, आगे की बात छोड़। अभी मैं आपको पूछूं किसने भागवत का दर्शन किया तो आप में से कोई होंगे, और पूछूं कि भागवत का किसने भागवत पढ़ा तो 1, 2, 10 कोई निकलेंगे। किसने भागवत गीता सारी पढ़ी ऐसा पूछूं वो भी 1, 2, 10 निकलेंगे। तो ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। तो ये मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, और इनकी डिजाइन क्यों की है भगवान ने, ताकि हम श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत करें। इसीलिए प्रयत्न करने के लिए हम समन्वय किया, बुद्धि का समन्वय, हाथ पांव आँख कान नाक जीभ त्वचा सब कुछ, इनफ शक्ति भगवान ने रखी मनुष्य देह में, क्यों, ताकि उनका प्रेम हम संपादित करें। तो लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम पुमान भवाब्दिम ना तरेत स आत्महना। ये होने पर भी अगर कोई मनुष्य ये भवाब्दिम, भव, भव किसे कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु श्रृंखला को क्या बोलते हैं, भाव। और भाव संसार को बोलते हैं उनको, उनकी उपमा समुद्र से की गई, भाव सागर, भाव सागर। सागर क्यों, कितना भी अच्छा तरवैया हो लेकिन वो सागर तर नहीं सकता। तर सकता है, कौन तर सकता है? तो इसीलिए घोर सागर, ये संसार है ये घोर सागर जैसा है, आप तैर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, गुरु और भगवान की शिक्षा। तो एक काल के लिए गुरु की शिक्षा क्या होगी? भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए चैंटिंग। तो चैंटिंग, तो एक समय के मुताबिक काम करना चाहिए, समय से विपरीत काम नहीं करना चाहिए। तो ये कलयुग है, हमारी आयु बहुत कम है, हम रोगिष्ट हैं, हम मंद बुद्धि हैं, हम मंद भागी हैं। कलो अस्मिन युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, ये हमारा हाल है। 100 साल की ज्यादा ज्यादा आयु, उसमें कम समय में हमें ज्यादा कल्याण कर लेना है, तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए आपको 500 मिलीग्राम की दवाई चाहिए। ये भव रोग लगा है हमें। कौन सा रोग लगा है? भव रोग। भव किसको कहते हैं? वेरी गुड, उनकी श्रृंखला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दीपावली। तो ये भव रोग तीव्र है हमारा, है ना? तो इसके लिए दवाई भी तीव्र लेनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चैंटिंग इज सिंपल एंड सबलाइन। क्या? सिंपल एंड प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सिंपल एंड सबलाइन। सबलाइन का अर्थ क्या है? उच्चतम, उच्चतम। सरल है चैंटिंग और सरल है, एट द सेम टाइम वो सर्वोत्तम है। तो क्यों ना हम ये अजमाए? तो ये चैंटिंग जो है, ये कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कोई गति कलयुग में दूसरे साधन, साधन अच्छे हैं लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो साधन है वो भगवान के नाम का साधन। तो आइए, कर्मकांड क्या है? तो कर्मकांड वो वेद का भाग है जहाँ हमें हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने के लिए अनेक विधि विधान बताए। हमें अप्सराओं के साथ मौज करनी है तो स्वर्ग में जाना होगा, तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, तो ये कर्म कांड है, पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अयि त्रयि धर्म अनुपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। नरसिंह मेहता गाते हैं, पुण्यकरियम रापुरी पाम्या अन्ते चौरासी माहिरे भूतल भक्ति पदारत मोटु ब्रह्मलोकमा नाहिरे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य करके हम अमरापुरी स्वर्ग गए, और क्षीणे पुण्य, पुण्य करी अमरापुरी पा अंत्य चौरासी माहिरे, अंत में पुण्य क्षय हो जाएगा तो 84 लाख योनियों में फिर से। तो क्या फायदा है कर्मकांड का? कुंजरवत, सोच कुंजरवत। हाथी नदी में स्नान करता है, किनारे आता है तो रेत अपने ऊपर लगाता है, तो स्नान करने का क्या फायदा? तो न स्वर्ग में जाओ क्षणिक सुख, तो वापस आओ जाओ वापस आओ, कर्मकांड। तो पुत्र चाहिए तो कर्मकांड, पैसा चाहिए तो कर्मकांड, शरीर चाहिए अच्छा रोग से मिटना है तो कर्मकांड। तो चैंटिंग का अर्थ है, हरे कृष्णा का अर्थ क्या है, हे राधारानी मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा दो, भक्ति दो। चैंटिंग का अर्थ क्या है, मुझे श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति दो, सेवा। तो कर्मकांड कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और चैंटिंग का अर्थ है मुझे श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना, उसको क्या बोलते हैं, भक्ति। तो उसमें कर्मकांड नहीं है, तत् सुखे सुखितम, उनके सुख में हमारा सुख, तत् दुखे दुखित्वम, उनके दुख में हमारा। तो उसमें कर्मकांड नहीं है, उसमें निस्वार्थ प्रेम श्री कृष्ण के लिए। चैंटिंग से हम ये मांग रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा, मुझे श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा दो राधारण। तो ये चैंटिंग का मीनिंग है। और कर्मकांड का अर्थ क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ या क्रियाएं या अनुष्ठान विधि विधान, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये कर्मकांड है, और ये प्रेम के लिए है चैंटिंग। चैंटिंग किस चीज के लिए है, श्री कृष्ण प्रेम। और श्री कृष्ण को प्रेम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनकी सृष्टि को प्रेम करोगे आपो आप। तो ये चैंटिंग का अर्थ है और ये कर्मकांड का अर्थ है। तो ये भगवत नाम का महात्म्य अगर आप समझो, सोचो, हर रोज पढ़ो, तो उनमें आपको अनुराग होगा, चैंटिंग में आपको प्रीति होगी। तो ऐसे हम एब्जॉर्ब हो सकते हैं कि इतना बड़ा नाम, और मैं ये नाम के बिना मेरा जीवन गवा रहा हूँ, तो दुख होना चाहिए। तो जब ये दुख होता है कि नाम कितना मधुर है, जगते आसी ये मधुर नाम, नाम बिना किच्छु नहीं चौदह भुवन माजे, नाम के बिना चौदह भुवन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए रूप गोस्वामी अपने आप को कितनी जीव की आशा करते हैं कि ये जीव से मैं नाम जप करूं, नाम कीर्तन करूं, कितनी जीव मांगते हैं, अनगिनित, मुझे अनगिनित जीव दो भगवान, ताकि मैं ये जीव से आपका नाम वाइब्रेट करूं। और ये जीव के बाद कितना मुंह मांगते हैं, अनलिमिटेड मुंह। और जब मुंह में जीवा से नाम निकला तो वो नाम सुनने के लिए कितने कान मांगते हैं, अनगिनित कान। और जब कान से ये नाम गुंजन हृदय तक पहुंचता है तो नाचने लगते हैं, हृदय राजे ना भजे हृदय राजे। तो ये जिनने महात्म्य नाम का रियलाइज किया है, अनुभव किया है, तो उनकी दशा ऐसी होती है। कैसी दशा होती है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन में जाओ, और अगर कोई अनुष्ठान ना हो, विधि विधान ना हो, नाम में ध्यान ना हो, नाम में प्रेम ना हो, नाम ना होता हो, या तो कुछ भी साधन आपसे नहीं हो सकता, और आप आपका कल्याण चाहते हैं, तो जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, वृंदावन में जाओ और पागल की तरह आपको हाथ ऊंचे करके जोरों से, जितना पागल जोर से नहीं बोल सकता उतने जोरों से बोलो, क्या बोलो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
हरे राम
आपका कल्याण हो जाएगा। कितना सरल, कितना सरल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जगते आसिए मधुर नाम, ये मधुर नाम जग में अवतरित हुआ है हमारे लिए। और चैतन्य देव कहते हैं नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान मम दुर्दैव मिदृशम यहाजनी ना अनुराग। हे भगवान, आपने आपके नामों में सब शक्ति का संचार किया है, लेकिन वो नाम रटन करने में मेरे तनिक भी अनुराग नहीं है। ये मेरा दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य है। चैतन्य देव कहते हैं चैतन्य चरितामिता अंत्य लीला और आखिरी चैप्टर और आखिरी चैतन्य महाप्रभु अंत में कहते हैं खाईते सुईते यथा तथा नाम लय देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। इसे कितनी छूट आपको चाहिए, कितनी छूट? क्या खाईते पीते, खाते हुए पीते हुए सोते हुए खाईते पीते, खाईते सुईते यथा तथा इधर उधर वैसे कैसे वैसे नाम लय नाम लो। देश काल नियम नाही, देश काल और नियम नहीं, सर्व सिद्धि होय। आपकी सिद्धि में कोई कमी नहीं रहेगी, सर्व सिद्धि होय। तो ये नाम का महात्म्य है। तो आप सब कल से ये हरि नाम का महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करनी है। कितनी करनी चाहिए? 24 घंटा। कितना नाम जप करना चाहिए? 24 घंटा। सततम कीर्तयन्तो माम। कितना कीर्तन करना चाहिए? सतत 24 आवर्स। तो 16 माला कम से कम, आधी 128, आधा 64, आधा 32। प्रभुपाद ने 32 की, गोरे भक्तों से न्यूयॉर्क में हुई नहीं, तो प्रभुपाद जी कहते बस 16, इससे काम नहीं। तो 16 माला भी प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला जो करेगा, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो मैं वैकुंठ के पिछले दरवाजे पे आपके लिए खड़ा रहूंगा और पिछला दरवाजा खोल दूंगा। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और यही आपका कल्याण है, और कल्याण होके ही रहेगा। और कुछ कमी रह जाएगी तो चैतन्य देव नित्यानंद, एक्चुअली नित्यानंद बहुत कृपालु, और प्रभुपाद जी और हमारे संप्रदाय में, ये संप्रदाय में इतने सुंदर आचार्य हुए, और एक नहीं दो नहीं कई कई आचार्य। तो इतना समृद्ध संप्रदाय है, और ये संप्रदाय जैसा निचोड़ तत्व ज्ञान सिद्धांत मत कोई भी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेगा, गारंटी। अभी तक जीव गोस्वामी की, रूप गोस्वामी की टीकाएं, बड़े बड़े विद्वान काशी में भी सब विद्वान लोग, एक जीव गोस्वामी तो एक ऐसे तो कहीं कहीं विद्वान पंडित आचार्य है हमारे संप्रदाय में। तो 16 माला कीजिए और आपका सर्वांगे कल्याण होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो यह कथा को विराम दूंगा। हरे कृष्ण।